मुझे उस रूम में एडमिट किया गया जिस रूम में बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज थी। ये एक रिमाइंडर था उस रियलिटी का जो कभी मेरी नहीं हो सकती, और बस मैं ये विश करती थी काश मेरे पास भी कोई एक ऐसी स्टोरी होती।
हेलो एंड वेलकम टू द जोश टॉक्स पॉडकास्ट वेयर वी स्पीक टू इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया। आई एम योर होस्ट सिद्धांत नाग एंड टुडे वी आर स्पीकिंग टू मेहा पांडे, a brave woman who went through numerous surgeries and operations and overcame her challenges with courage and perseverance. Hello Meha, welcome to the Josh Talks podcast. Being self-reliant is an extremely important trait to develop in today's world. Some people have the good fortune of building this skill on their own terms, but some have to learn it through life's challenges. Can you tell us which of these was the case for you?
मैं नैनीताल में ही पली बड़ी, और वहाँ पे घर की हर एक चीज़ पे मेरा बहुत सॉलिड कंट्रोल था। सब मुझे घर में बॉस बेबी बोलते थे, लेकिन गुड रीजंस के लिए। बड़ी हुई, जॉब ज्वाइन किया, एंड एज अ टीचर मैंने सीखा ज़्यादा कंपैशनेट होना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना। फिर मेरी शादी हुई अनिकेत से, हु इज़ एन आर्मी ऑफिसर। लाइफ टुक अ 360 डिग्री टर्न। मैं ज़्यादा मेटिकुलस बनी, ज़्यादा पंक्चुअलिटी सीखी, एंड यस बहुत 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 ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनी। लाइफ के सारे फेजेस में जो एक चीज़ मेरे साथ कांस्टेंट थी वो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मेरी लाइफ के ऊपर और लाइफ के डिसीजंस के ऊपर पूरा कंट्रोल है। चाहे वो डिसीजन हो अपना फ्लरिशिंग करियर छोड़ करके अनिकेत के साथ उसकी पोस्टिंग्स में उसको ज्वाइन करना, या फिर एक गोल्डन रिट्रीवर पापी को घर लेके आना और उसकी मम्मी का रोल निभाना, कथक सीखना, एडवेंचर पे जाना, सारे डिसीजंस मेरे थे। हाउएवर लाइफ ने एक ट्विस्ट लिया न्यू ईयर 2021, जब सब सेलिब्रेट कर रहे थे विद द होप कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। मेरे लिए एक बहुत डार्क फ्यूचर तैयार था। ड्यूरिंग द पार्टी एक चना दाल टिक्की खाते वक्त आई चोक्ड माई सेल्फ। अनबिलीवेबल है, पर हाँ ये हुआ था। आई वॉज इमिडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, एंड वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे इनिशियल ट्रीटमेंट दिया, एंड उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ दी खाने के लिए। कुछ दिनों तक वो मेडिसिंस मैंने ली, और उसके बाद मुझे सडन पेन स्टार्ट हुआ मेरे लोअर लेफ्ट अबडोमिन पे। मुझे लगा ये एंटीबायोटिक्स का ही साइड इफेक्ट है, और मैं डॉक्टर के पास वापस गई। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि ये पेन किसी भी हालत में एंटीबायोटिक्स से पेन उठने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है कि ये एक स्टोन का पेन हो या फिर एक छोटा सिस्ट हो। मैं कॉन्फिडेंट थी कि ये स्टोन होगा बिकॉज मेरी हिस्ट्री रही है। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, एंड जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई तो मैं शॉक्ड थी, क्योंकि रिपोर्ट्स में क्लियरली दिख रहा था कि मेरी लेफ्ट ओवरी के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। हमने ब्लड टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट्स संडे को आई। रिपोर्ट्स देखते ही मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा था कि मेरे CA125 लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। CA125 जो कि ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कराया जाता है, अगर इसकी मात्रा बॉडी में 30 से ज़्यादा आती है तो उसका एक ये इंडिकेशन होता है कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है, और इट कैन बी कैंसर। मुझे सजेस्ट किया गया कि मैं वहाँ जा करके एक सीनियर ऑनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलूँ। ऑनको गायनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि डील करते हैं कैंसर पेशेंट्स के साथ जिनको प्रॉब्लम होती है किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एग्जामिन किया, और उनको सिटी स्कैन की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने मुझे और अनिकेत को अपने रूम में बुलाया और हमसे साफ साफ बोला कि मुझे उसी दिन 6 बजे एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। अब तक मुझे आदत थी हर चीज़ अपने कंट्रोल में के हिसाब से करने में, पर अब ये चीज़ें मेरे हाथ में थी ही नहीं। मैं डॉक्टर से और अनिकेत से कहती रही कि मैं यहाँ पर केवल सिटी स्कैन के लिए हूँ, और मैं इमरजेंसी सर्जरी के लिए नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे ये समझाया कि अगर मैं सर्जरी के लिए नहीं जाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत घातक हो सकता है, फेटल हो सकता है, क्योंकि मेरा जो ट्यूमर था वो रोटेट कर गया था, वो घूम गया था, उसकी वजह से नसों में रक्त का प्रभाव बंद हो सकता था।
Life is always in a state of flux, sometimes good and sometimes bad. But what really counts is how we handle these. Can you tell us how you stayed strong and moved forward despite the difficulties and tough situations?
किसी तरीके से हिम्मत जुड़ा करके मैं सर्जरी के लिए मानी. डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो मेरे ट्यूमर को रिमूव करेंगे. लेकिन जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो डॉक्टर्स को रियलाइज़ हुआ कि वो ट्यूमर इतना बढ़ चुका था कि असंभव था उसको मेरी ओवरी से अलग करना, और इसलिए उनको मेरी लेफ्ट ओवरी रिमूव करनी पड़ी. जैसे ही मुझे ये बात सुनाई दी, मैं रोने लगी और बहुत ज़्यादा कांपने लगी. सर्जरी हो गई. डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे अग्रेसिव एडीनोकार्सिनोमा ओवेरियन कैंसर स्टेज 2 है. मेरी पूरी दुनिया वहीं पे थम गई. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में आगे होने क्या वाला है. हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सिलीगुड़ी से दिल्ली शिफ्ट होंगे बेटर ट्रीटमेंट के लिए. दिल्ली आए, यहाँ बहुत डॉक्टर्स के चक्कर लगाए. कुछ डॉक्टर्स ने ये तक सजेस्ट किया कि रुक जाइए, पहले बच्चा पैदा कर लीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट कर लीजिएगा. पर अनिकेत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था. हम डॉक्टर से मिले और फाइनली मेरा ट्रीटमेंट का जो कोर्स था वो तैयार हुआ. मुझे एक कंप्लीशन सर्जरी के थ्रू जाना था और 6 राउंड्स ऑफ कीमोथेरेपी. कंप्लीशन सर्जरी में डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि वो मेरे पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव करेंगे, उसके साथ साथ वो मेरे आसपास के लिम्फ नोड्स भी रिमूव करेंगे. मुझे उस रूम में एडमिट किया गया जिस रूम में बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज थी. ये एक रिमाइंडर था उस रियलिटी का जो कभी मेरी नहीं हो सकती थी. किसी तरीके से हिम्मत जुड़ा करके मैं सर्जरी के लिए गई. मेरे 60 स्टिचेस आए थे चेस्ट से लोअर एब्डोमेन तक. आज भी उसके मार्क्स मेरी ब्रेवरी का साइन है. जब मैं सर्जरी के बाद उठी, मुझे याद है वो पेन, इतना पेन था कि लेग उठाना, टर्न करना तो बहुत दूर की बात है, ब्रीथ करने में भी मुझे तकलीफ होती थी. उसी रात को मेरे स्टिचेस नेवल के बिल्कुल ऊपर वाले, उनसे पस निकलने लगा और मुझे 102-103 बुखार आने लगा. इमिडिएटली मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे स्टिचेस में इन्फेक्शन हो गया है और उनको मेरे 10 स्टिचेस दोबारा खोलने होंगे, एंटीबायोटिक्स से वूंड को फिर से ड्राई करना होगा, दोबारा उसको स्टिच लगाना होगा, फिर एंटीबायोटिक्स देने होंगे. 25 दिन बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब वो मेरे वूंड को फिर से स्टिच करके 5 दिन एंटीबायोटिक्स देके मुझे डिस्चार्ज कर सकते हैं. जिस दिन मुझे डिस्चार्ज होना था उसकी रात में मैंने रियलाइज़ किया कि इस बार जो मेरे नेवल के नीचे वाले स्टिचेस हैं उनसे पस निकल रहा है. मेरे आँखों में फिर से आंसू थे और मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे अपने आप को एक और ऑपरेशन थिएटर की विजिट के लिए तैयार रखना है. अगले दिन वही हुआ जो मैंने सोचा था. फिर से स्टिचेस खुली, फिर से वही ट्रीटमेंट शुरू हो गया. इस बार ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इस टाइम तक मेरी वेंस ने जवाब दे दिया था. डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे वेंस के थ्रू कोई भी दवाई देना, इसलिए उन्होंने शुरू किया मुझे ओरल मेडिसिन देना, जिसकी वजह से मेरा जो पूरा रिकवरी थी वो बहुत डिलेड थी. 50 दिन हॉस्पिटल में अकेले रहने के बाद मुझे डिस्चार्ज मिला. मैं घर पहुंची और फिर एक नई जंग की तैयारी शुरू हो गई. मुझे अपने आप को तैयार करना था अपने कीमोथेरेपी सेशंस के लिए. क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव थी, इसलिए डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि 21 दिन की साइकिल नहीं देंगे, बल्कि हर हफ्ते मुझे थोड़ी थोड़ी डोज कीमोथेरेपी की दी जाएगी. कुछ दिनों बाद कीमोथेरेपी का जो सबसे बड़ा और जो सबसे विजिबल साइड इफ़ेक्ट होता है वो दिखने लगा, जब मेरे बाल इधर उधर झड़ने लगे. मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बाल शेव करूँगी. मैं वॉशरूम में गई एंड मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से उनका हेयर ट्रिमर मांगा और मैंने अपने बाल शेव किए. मुझे बहुत क्लियरली याद है जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे फेस पे एक बहुत ब्रॉड स्माइल थी, क्योंकि मेरे घर वाले वहाँ बाहर मेरा वेट कर रहे थे. मेरे लिए ये फेस थोड़ा डिफिकल्ट था. एनीवेज, 4 कीमोथेरेपीज हो गए और मुझे लगा कि चलो अब तो कुछ ही दिन और बचे हैं स्ट्रगल के, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था. 4 कीमोथेरेपी के बाद एक रात मुझे फिर दर्द उठा. जब डॉक्टर्स के पास गए तो पता चला कि मेरा कैंसर रिलैप्स हो चुका है. डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मुझे एक और सर्जरी करवानी पड़ेगी. डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो मेरे सिग्मोइड कोलन, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि बॉडी के वेस्ट को बाहर निकलने में मदद करता है, उसको कट करेंगे और उसके साथ साथ वो मुझे हाईपैक देंगे। हाईपैक सिंपल शब्दों में कहते हैं उसे हॉट कीमो। इसमें क्या होता है, इसमें ऑपरेशन के समय ही वो इस हॉट कीमो को जो बॉडी का इफेक्टेड पार्ट होता है वहाँ पर देते हैं। कीमोथेरेपी की मेडिसिन को 41 टू 42 डिग्रीज पे वो हीट करते हैं और उसके बाद आपके बॉडी पे वो देते हैं। मेरे लिए ये सर्जरी बहुत स्कैरी थी क्योंकि इस समय तक मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बॉडी एक और सर्जरी ले पाएगी या नहीं। मेरी सर्जरी हुई, पूरे 12 घंटे लंबी सर्जरी। उसके बाद मुझे वेंटिलेटर पे डाला गया जिसको हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। हर जगह से पाइप्स लगे हुए थे। बहुत दिन आईसीयू में निकालने के बाद मैं फाइनली घर पहुंची अपनी नेक्स्ट 2 कीमोथेरेपी सेशन के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। इस बार मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना ये टाइम सो करके कमरे में अकेले बैठ करके वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ नया सीखना है। मैंने इस बीच बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, जैसे कि रेकी हीलिंग, एनिमल कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ तो मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बचपन से मैं सीखना चाहती थी क्रोशिया, जो मैं कभी नहीं सीख पाई, पर मैंने उसके लिए भी वक्त निकाला। एंड यहाँ पे आता है रोल मेरे स्नाइपर का, मेरे गोल्डन रिट्रीवर फर बेबी का। मैंने जो जो बनाया वो उसको मैंने उसको पहनाया और वो एक मेरा मॉडल बन चुका था और मुझे बहुत खुशी होती थी जब मैं देखती थी कि उसने मेरे बनाए हुए क्रोशिया का हार्नेस पहना है या फिर कॉलर पहना है। हल्के हल्के वक्त बीतता गया और मेरी 2 और कीमोथेरेपीज हो गई। डॉक्टर्स ने फाइनली मुझे बताया कि मैं अपनी जंग जीत चुकी हूँ। मुझे बहुत क्लियरली याद है उस दिन घर में कितना खुशी का माहौल था, क्या सेलिब्रेशन हुआ था। एंड खासकर स्नाइपर, मेरी पूरी जर्नी में स्नाइपर कभी भी मेरे कमरे के अंदर नहीं आया, जैसे कि उसको इस बात का एहसास था कि उसे मुझसे दूर रहना है। वो पूरे महीने मेरे कमरे के बाहर रहता था, पर उस दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर लौटी तो वो मेरे पास खुशी से दौड़ के आया, मेरे कमरे में आया और उसके बाद मेरे कमरे से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ।
If you like what you're hearing and you'd like to hear more inspiring talks like this, then don't forget to click the follow button and the bell icon next to it. Now, let's continue. Meha, can you share with us the emotional journey you had whilst going through this phase? In cheezon ne aapko kaise affect kiya?
Ye jo pura daur tha, ye mere liye bahut mushkil daur tha. मैं दिन भर अकेले उस हॉस्पिटल रूम में बैठ करके अपने कमरे के बाहर वाले कॉरिडोर को निहारती रहती थी और जिसको देख करके मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी काली गुफा है जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मैं ये जानती थी कि अगर मैं इनके सामने रहूंगी तो ये लोग टूट जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट पर्सन जो हर काम अपने आप करती थी, आज डिपेंडेंट हो गई थी दूसरों पर। मैं अपनी सिस्टर पे डिपेंडेंट थी नहाने के लिए, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी यहाँ से वहाँ चलने के लिए। मेरे लिए ये फेज थोड़ा डिफिकल्ट था। मैंने अपनी एक ऐसी बैटल जीती है जो कि असंभव थी। इसके साथ साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी ज़्यादा लव्ड हूँ। मेरे आसपास जो लोग थे उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आज भी उसके लिए धन्यवाद कह सकती हूँ और कुछ नहीं।
Surgery is always a nervous affair, और आपने तो इतनी सारी surgeries face किए, आपको ये motivation और निडरता कहाँ से मिली?
जब मुझे operation theater में लेकर के जा रहे थे तो मेरी नज़र एक पेड़ पे पड़ी। वो पेड़ जो जड़ से अलग हो चुका था लेकिन फिर भी उसमें हरे पत्ते थे। उसके ऊपर अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा मैसेज लिखा था और वो था will to survive, जीने की इच्छा। ये एग्जैक्टली वही मोटिवेशन था जो मुझे उस टाइम पे जिसकी ज़रूरत थी। मेरी इस जर्नी में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत लोगों से मिली, काफ़ी लोग ऐसे जिनको मेरी जैसी ही कोई बीमारी थी, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनका डायग्नोसिस बहुत लेट स्टेज पे हुआ था और उनके पास कोई इलाज नहीं था।
Happiness seems to elude many people. Even those that are quote-unquote successful. आपकी क्या राय है happiness पे?
मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपने हेयर ग्रोथ के बाद कंघी करी थी, उस दिन मैंने रात में अपनी बहन के साथ जम के पार्टी करी थी। जब मैं पहली बार 5 किलोमीटर चली अपने इलाज के बाद, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड का मोमेंट था। मैंने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीख लिया है।
थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द फॉलो बटन एंड द बेल आइकॉन टू कीप अप विद जोश। You could also click the 3 dots and then the share button to send a dose of inspiration and Josh to your friends and family. We hope that today's episode encourages you to take action and achieve your goals, and we'll see you in the next episode of the Josh Talks podcast with me, Siddhant Nag.